16 भक्ति काव्य और लोक धर्म। लोक शब्द अनेकार्थी शब्द है, अंग्रेजी में जिसे फोक कहते हैं। साहित्य एवं कलाओं एवं सामान्य व्यवहार में हिंदी में उसे लोक के रूप में समझा जाता है, उदाहरण के लिए लोक गीत, लोक कलाएं आदि। यहाँ लोक परिष्कृत परनिष्ठित या शिष्ट का विलोम है। लोक शब्द हिंदी में साधारण जन के लिए भी प्रयुक्त होता है, जिसका विलोम अभिजन या अभिजात वर्ग के लोग हैं। जब शुक्ल जी लोक जीवन की बात करते हैं, उनका मतलब प्रायः साधारण जनता के इसी विशाल भाग से होता है। लोक शब्द वस्तु जगत, बाह्य जगत या जिसे हम संसार कहते हैं, उसके लिए भी प्रयुक्त होता है, तब इसके विलोम के रूप में परलोक शब्द का व्यवहार होता है। साधारणतः लोक का अर्थ हम इसी संसार से लेते हैं, उस समाज से लेते हैं जिसमें मनुष्य रहता है और अपने क्रियाकलाप करता है। यह संसार या समाज जिसमें हम रहते हैं एक सा नहीं है, इसमें अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, उच्च वर्गों के लोग भी हैं, निम्न वर्गों के लोग भी हैं, शिक्षित अशिक्षित सभी इनमें हैं। इनके इन सब के अपने अपने हित हैं जो आपस में टकराते भी हैं। हमारा यह समाज वर्गों में बटा हुआ समाज है, जिसमें अधिकांश जनता श्रम करने वाली जनता है और एक छोटा अंश वह है जो संपत्तिशाली है, बिना श्रम किए दूसरों के श्रम से लाभ कमाता है, उत्पादन के साधनों का स्वामी है, समाज की गतिविधियों, आचार व्यवहारों, कानून कायदों आदि का निर्माता और नियंता है। वर्गबद्ध समाजों में प्रभुत्वशाली वर्ग की विचारधारा ही समाज की प्रधान विचारधारा होती है, समाज में उसी का पालन अनपालन होता है। अपने देश की बात करें तो परंपरा से चले आते हुए सारे धर्म शास्त्र इसी प्रभुत्वशाली वर्ग के रचे हुए हैं, जिन्हें उसने संपूर्ण समाज के लिए रचा है और संपूर्ण समाज उसका पालन करे, ऐसी व्यवस्था भी उसने दी है। जिस लोक और परलोक की बात हमने ऊपर की है, वे अवधारणाएं भी इसी वर्ग की बनाई हुई हैं। लोक से आगे परलोक की कल्पना और व्याख्या उसकी अपनी विशिष्ट देन है। परलोक की चिंता में जो आज हमारा सारा भारतीय समाज मशगूल है, वह इसी प्रभुत्वशाली वर्ग की सोच का सुफल है जो शास्त्र उसने रचे हैं। उनमें इस परलोक के बारे में बहुविध चिंतन है, जो परंपरा से देश की जनता के मन मस्तिष्क में विद्यमान चला आ रहा है। किंतु चूंकि हमारा देश विशाल देश है और इसकी बहुसंख्यक जनता श्रम करने वाली किसानी, कारीगरी, मजदूरी या जीविकोपार्जन के अन्य साधनों को स्वीकार करने वाली जनता है, अधिकतर शिक्षित और गांव में रहने वाली जनता है, और इस जनता में साधारण जन के अलावा साधारण जन में भी साधारण बहुत सी जनजातियां हैं, अस्पृश्य और अंत्यज हैं, अतएव शास्त्रोक्त विधानों से भिन्न उनका संबंध सामाजिक आचार व्यवहार से हो या धार्मिक आचार व्यवहारों से, साधारण जनता की एक अपनी वैविध्यपूर्ण सामाजिक धार्मिक आचार संहिता, मान्यताएं, रीति रिवाज, कानून कायदे, आस्था विश्वास आदि भी यहाँ शास्त्रोक्त विधानों के समानांतर विद्यमान भी रहते हैं और आचरित भी होते रहे हैं। ऐसा इस नाते भी हुआ है कि जिन्हें हम आर्य कहते हैं, उनके प्रभुता के पहले उनसे भिन्न दूसरी जातियों और कबीलों की भी सुसंपन्न सभ्यताएं यहाँ विद्यमान रही हैं। उनकी अपनी संस्कृति भी यहाँ फलती फूलती रही है। इसके अलावा समय समय पर अनेक जातियां और कबीले बाहर से यहाँ आते रहे हैं, बसते रहे हैं और बहुत कुछ यहाँ की विद्यमान सभ्यता और संस्कृति से लेते हुए, साथ ही अपना बहुत कुछ उन्हें देते हुए यहाँ घुल मिल जाते रहे हैं। कालांतर में जब वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृतियां तथा अन्य नाना शास्त्र आर्य जाति द्वारा रचे गए, तो स्वभावतः उनसे साधारण जनता में प्रचलित सामाजिक धार्मिक आचार विश्वासों मान्यताओं का कहीं मेल बैठा और कहीं नहीं बैठा। स्थिति यह हुई कि शास्त्र और लोक समानांतर कभी मिलते कभी टकराते चलते रहे। जहाँ अलगाव अधिक हुआ तो प्रभुत्वशाली पंडों ने शास्त्रों का सहारा लेकर जनता के उन लोगों को बाहरी घोषित कर दिया, वर्ण तथा चली आ रही जाति व्यवस्था से बहिष्कृत कर दिया। ऐसे लोगों तथा समुदायों के बीच धार्मिक, सामाजिक, रीति रिवाज और कानून कायदे शास्त्र से एकदम अलग हो गए और लोग प्रचलित दूसरे आचार व्यवहारों के साथ अपने ढंग से चलने लगे। लोक और शास्त्र में टकराव की स्थितियां यूं तो प्रत्येक युग में विद्यमान रही हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायतों के अलावा आगे चलकर सिद्धों और नाथों ने भी चली आ रही वेद शास्त्र विहित मान्यताओं, विचारों, आचार व्यवहारों को चुनौती दी और अपना अलग रास्ता बनाया, जिसे हम भक्ति का युग कहते हैं। लोक और शास्त्र का द्वंद उसमें भी उभरा और उस दृष्टि से यद पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति युग की का मुख्य अंतर विरोध लोक और शास्त्र का द्वंद मानते हैं तो यह गलत नहीं है। अपने ढंग से आचार्य शुक्ल भी यही कहते हैं, जब वे विद्यमान तमाम सारी सामाजिक धार्मिक अव्यवस्था के बीच तुलसी के आविर्भाव को, उनके समन्वयवाद को, उनके द्वारा लोक को सही पटरी पर लाने और उसे आर्य शास्त्रानुमोदित पथ पर आगे बढ़ाने का श्रेय तुलसीदास जी को देते हैं। द्वंद्व की ये स्थितियां न होती तो शुक्ल जी द्वारा तुलसीदास के इस युगांतकारी महत्व का मतलब क्या। बहरहाल यह शुक्ल जी का मत है जो यह सिद्ध करता है कि गोस्वामी जी के समय में भी लोक और शास्त्र के बीच शुक्ल जी की सोच के अनुसार जैसा तालमेल अपेक्षित है वैसा नहीं था। यह भी स्पष्ट है कि भक्ति आंदोलन के समय लोक शास्त्र के ऊपर प्रबल हो उठा था, अन्यथा डॉक्टर रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहकर विज्ञापित न करते। उन्होंने लिखा है कि किसी समय रहस्यवाद ने साहित्य और समाज में बड़ी क्रांतिकारी भूमिका पूरी की थी। मनुष्य में ब्रह्म दर्शन करके कवियों ने मनुष्य मात्र की समानता की घोषणा की थी। धर्म संप्रदाय वर्ण मत मतांतर आदि के भेदों का विरोध करके मानवता की प्रतिष्ठा की थी। पुरोहित और देववाणी के दर्प से आतंकित न होकर उसने लोक भाषाओं की साहित्य में प्रतिष्ठा की थी। जाहिरा तौर पर डॉक्टर रामविलास शर्मा का इशारा सगुण भक्ति कविता की ओर न होकर निर्गुण भक्ति कविता और संतों की ओर है। कारण रहस्यवाद की बात प्रायः उन्हीं के संदर्भ में की जाती है तथा धर्म संप्रदाय वर्ण और मत मतांतर के भेदों का विरोध करते हुए मानवता की एक मानवता की बात उन्हीं के माध्यम से सामने आई थी। अनेक बातों में समान होते हुए भी विचारों विशेषतः सामाजिक धार्मिक विचारों और उनके आचरण को लेकर निर्गुण और सगुण संतों और भक्तों का स्वर एक नहीं है। निर्गुण संत जहाँ परंपरागत वेद शास्त्र आदि को चुनौती देते हुए उनकी बुनियाद का ही विरोध करते हैं, वहाँ सगुण भक्त विशेषतः तुलसीदास तमाम सारे लचीलेपन के बावजूद बुनियादी तौर पर आर्य शास्त्रानुमोदित धर्म तथा समाज व्यवस्था का समर्थन करते हैं और इसी नाते शुक्ल जी को प्रिय हैं। तभी शुक्ल जी द्वारा दी गई लोक धर्म की परिभाषा के भीतर तुलसी के विचार और उनके अर्थ तो अंट जाते हैं, निर्गुण संतों के विचार तथा अर्थ नहीं अंटते और शुक्ल जी सीधे उनका विरोध करते हैं और उनके विचारों तथा अर्थों को सामाजिक दृष्टि से, लोक की दृष्टि से, अपनी अवधारणा के लोक की दृष्टि से अहेतुक बताते हैं। लोक धर्म की शुक्ल जी की परिभाषा है, संसार जैसा है वैसा मानकर उसके बीच से एक एक कोने को स्पर्श करता हुआ जो धर्म निकलेगा वही लोक धर्म होगा। जीवन के किसी एक अंग मात्र को स्पर्श करने वाला धर्म लोक धर्म नहीं। जनता की प्रवृत्तियों का औसत निकालने पर धर्म का जो मान निर्धारित होता है वही लोक धर्म होता है। जिस धर्म की रक्षा से लोक की रक्षा होती है, जिससे समाज चलता है, वह यही व्यापक धर्म है। सत और असत, भले और बुरे के मेल का नाम संसार है। पापी और पुण्यात्मा, परोपकारी और अत्याचारी, सज्जन और दुर्जन सदा से संसार में रहते आए हैं और सदा रहेंगे। शुक्ल जी आगे कहते हैं और अब अधिक स्पष्ट होकर कहते हैं, ईसाई बौद्ध जैन इत्यादि वैराग्य प्रधान मतों में साधना के जो धर्मोपदेश दिए गए उनका पालन अलग अलग व्यक्तियों ने चाहे कुछ किया हो पर सारे समाज ने नहीं किया। अतः व्यक्तिगत साधना के कोरे उपदेशों की तड़क भड़क दिखाकर लोक धर्म के प्रति उपेक्षा प्रकट करना पाखंड ही नहीं है, उस समाज के प्रति घोर कृतज्ञता भी है जिसके बीच काया पली है। लोक मर्यादा का उल्लंघन, समाज की व्यवस्था का तिरस्कार, अनाधिकार चर्चा, भक्ति और शास्त्र का मिथ्या दंभ, मूर्खता छिपाने के लिए वेद और शास्त्र की निंदा, ये सब बातें ऐसी थी जिनसे गोस्वामी जी की अंतरात्मा बहुत व्यथित हुई और शुक्ल जी की अपनी अंतरात्मा भी बहुत व्यतीत रही है। जाहिर है कि शुक्ल जी यहाँ वेद और शास्त्र भी उन्हीं मर्यादाओं और विचारों का समर्थन कर रहे हैं जिन्हें ऊपर हम समाज के प्रभुत्वशाली वर्गों की देन कह चुके हैं और जिनके खिलाफ ही बुद्ध, महावीर, लोकायत, सिद्धनाथ, कबीर तथा दूसरे संत उठ खड़े हुए थे। अतएव इस विषय पर तुलसी के पूर्वाग्रह बिल्कुल साफ हैं। शुक्ल जी के पूर्वाग्रह बिल्कुल साफ हैं, जो स्पष्टतः इस बात का साक्ष्य भी देते हैं कि न केवल भक्ति आंदोलन के समय लोक और शास्त्र का द्वंद्व प्रबल था जहाँ तक लोक धर्म का सवाल है, निर्गुण संत तथा सगुण भक्तों में भी उसे लेकर मतभेद ही नहीं था। अनेक स्तरों पर वे एक दूसरे के विरोध में भी खड़े थे। ऐसी स्थिति में स्पष्ट हो जाता है कि जिसे लोक धर्म कहते हैं उसके अवधारणा तथा उसका पालन अल्पानन समूचे भक्ति काव्य में एक जैसा नहीं है। अलग अलग संतों और भक्तों में उसका रूप अलग अलग है। संतों तथा भक्तों में तो वह अलग है ही। मसलन कबीर की बात लें, तुलसी शुक्ल जी के मत से जैसा कि उनके ऊपर के कथन से स्पष्ट है, कबीर उनकी परिकल्पना के लोक धर्म के विरोधी हैं। वे पढ़े लिखे न होकर भी ज्ञान की बात करते हैं, वेद और शास्त्रों की आलोचना करते हैं, पंडितों को चुनौती देते हैं, उनकी मखौल उड़ाते हैं, समाज की व्यवस्था का तिरस्कार करते हैं। आज आज आचार्य जाहिद साहब द्विवेदी को कबीर का यह आचरण बुरा नहीं लगता। वे इसमें कबीर के अस्वीकार का साहस देखते हैं, उनके व्यक्तित्व का तेज पाते हैं और उनके साधना की गहराई और निष्ठा का प्रमाण पाते हैं। किंतु आचार्य जाहिद साहब द्विवेदी जहाँ कबीर के इस आचरण में शास्त्र और लोक का द्वंद्व तो पहचान लेते हैं, उसे उभारते भी हैं, किंतु उस द्वंद्व को नहीं पहचान पाते जो कबीर के यहाँ लोक और लोक के बीच है। कबीर यदि अनपढ़ होते हुए वास्तविक अर्थों में ज्ञानी हैं तो इसलिए कि वे परंपरागत वेद और शास्त्र जन्य मिथ्या आचारों विचारों एवं भेद बुद्धि की भर्त्सना तो करते ही हैं, उन लोकाचारों की धज्जियां भी उड़ाते हैं। मसलन तमाम प्रकार के सामाजिक धार्मिक अंधविश्वास, तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका आदि जो साधारण जन या लोक के बीच प्रचलित थे, आचार्य द्विवेदी उन्हें न केवल लोक धर्म के भीतर स्वीकार करते हैं, कहीं कहीं उन्हें डिफेंड भी करते हैं, उन्हें सही और उचित भी बताते हैं। कबीर यही कबीर हैं और इन आचार्यों की पकड़ से भी बाहर हो जाते हैं। वेद शास्त्र कुरान और सुन्नत ही नहीं, पंडित और मुल्ला पाणे और काजी ही नहीं, वे लोक को भी समान आक्रोश के साथ फटकारते हैं। इन लोक परक विश्वासों को कबीर लोकाचार कहते हैं और ऐसे मिथ्या लोकाचारों की धज्जियां उड़ा कर रख देते हैं। कबीर संबंधी अपने पिछले निबंध में हमने कहा है कि कबीर मृत्यु के समय काशी छोड़कर मगहर चले गए थे। इस लोक विश्वास को तोड़ते हुए कि काशी में मरने से मुक्ति मिलती है और मगहर में मरने वाले को निकृष्ट पशु यौन, काशी छोड़ते समय लोक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, लोक का तुम हो मत के भोरा, निरर्थक कर्मकांड, माला फेरना, गंगा नहाना, तीर्थ व्रत करना जिसके लिए उपहास की वस्तु हो, जादू टोना, तंत्र मंत्र उसके लिए क्या होंगे, सहज ही अनुमान किया जा सकता है। कबीर ने किसी भी प्रकार के धार्मिक समन्वयवाद का विरोध किया, यह हम कह चुके हैं। वे वस्तुतः एक नए धर्म की बुनियाद रखना चाहते थे, वह था मानव धर्म। वे हिंदू मुसलमान जात पात स्पृश्य अस्पृश्य से परे एक ऐसी मनुष्यता के विश्वासी थे जहां मनुष्य और मनुष्य में भेद न हो। कबीर के इसी प्रयत्न को उनकी इस सोच को परंपरागत समाज व्यवस्था तथा धर्म शास्त्र विरोध को उनका लोक धर्म विरोधी आचरण कहा जाए या एक नए लोक धर्म की प्रतिष्ठा, शुक्ल जी के लिए वह लोक धर्म विरोधी हो, सामाजिक अराजकता का प्रश्रय हो, हमारे लेखे कबीर का यही लोक धर्म उन्हें अपने समय से आगे हमारे अपने समय की सोच से बांधता है। यही कबीर का युगांतर कारी क्रांत दृष्टा व्यक्तित्व है, जिसे शुक्ल जी पहचानते हुए भी अपने पूर्वाग्रहों के चलते रेखांकित नहीं कर सके और न ही द्विवेदी जी रेखांकित करते हुए भी उसे मिथ्या लोकाचार से अलगा सके। जो कबीर का लोक धर्म है वही नानक का तथा दूसरे संतों का है। इस लोक धर्म में अन्याय, अनेच, भेदभाव, निष्प्राण रूढ़िवाद, धार्मिक विडम्बनावाद सबका विरोध है। उसका संबंध शास्त्र से हो अथवा लोक से, कबीर के इस लोक धर्म को पहचानना ही कबीर को सही रूप में पहचानना है। हम यह भी कह चुके हैं कि कबीर थोथे योग को भी अस्वीकार करते हैं। भस्म भूत समाज और साधना जन्य चमत्कारों से उनका कोई वास्ता नहीं है। लोक को बराबर इस पाखंड के प्रति वे सावधान करते हैं। ऐसे कबीर की संगत किसी से नहीं बैठती, पोथी ज्ञान की हंसी उड़ाने वाले तथा पंडित बात बदनते झूठा कहकर उनकी आलोचना करने वाले तथा काजी मुल्लाओं को हैरानी में डाल देने वाले और उन्हें विचलित कर देने वाले सवालों को पूछने वाले कबीर की यदि प्रभुत्वशाली वर्गों ने धर्म के ठेकेदारों ने उनके अपने समय में खिलाफत की तो यह स्वाभाविक था। अरे ओ ब्राह्मण, यदि तुम ब्राह्मणी के जाए हो तो बताओ कि तुम और किसी रास्ते से दुनिया में क्यों नहीं आए, और मुल्ला तुम बताओ कि खतना माँ के पेट से करा के क्यों नहीं आए, या तुम दोनों बताओ कि क्या भगवान मंदिर में रहता है खुदा मस्जिद में, तो जहाँ मंदिर और मस्जिद नहीं है वहाँ किसकी ठकुराई है। कबीर के यही सवाल उनके समय में भी अनुत्तरित रहे और आज भी हैं। उनका मनुष्य सत्य उनके समय में भी एक आकांक्षा बना रहा, आज भी है। उनका लोक धर्म उनके अपने समय में काम में रहा, आज भी है। किंतु जैसा हमने पिछले निबंध में कहा है, आने वाली शताब्दी कबीर की शताब्दी होगी। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी संत के रूप में ख्यात हैं। सूफी संत वे हों या न हों, जैसा कि विजय देव नारायण शाही का कहना है, वे कवि हों, प्रेम के कवि, किंतु उनकी सहृदयता और मनुष्यता को शुक्ल जी ने भी रेखांकित किया है। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने अपने मनुष्य होने का परिचय दिया। शुक्ल जी का यह कथन व्यक्ति की धार्मिक पहचान से परे उनकी इंसानी पहचान को महत्व देता है। कबीर या सगुण भक्तों की तरह जायसी किसी सामाजिक मिशन को लेकर नहीं चले। उनके द्वारा रचित पद्मावत में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि क्रांतिमानस की भांति उनकी रचना सामाजिक स्थितियों की जरूरत या मांग के चलते हुई हो। उनका समय भी गोस्वामी जी के आसपास का ही समय था। जायसी संबंधी अपने निबंध में हम पद्मावत में लोक संस्कृत, विशेष रूप से अवध प्रदेश की लोक संस्कृत की चर्चा कर चुके हैं। हम यह कह चुके हैं कि पद्मावत की पूर्वार्ध की सारी कथा भी लोक के बीच प्रचलित कथा है। जायसी ने इस लोक कथा के उत्तरार्ध में इतिहास प्रसिद्ध कथा को गूंथा है और इस प्रकार उनका पद्मावत काव्य की तथा इतिहास की ऐसी मिलीजुली प्रस्तुत है जिसमें लोक का कथा रस, कथानक रूढ़ियां, हिंदुओं के प्रचलित धार्मिक विश्वास, तिथि त्योहार सब कुछ एक रस हो गए हैं। अवध प्रदेश के साधारण लोगों की जिंदगी की छवियां भी नागमती वियोग में है, किंतु जायसी में जो यह सब कुछ है वह लोक तत्व, फोक एलिमेंट्स है, जिसे लोक धर्म कहकर हमने ऊपर व्याख्यायित किया है, यह वह नहीं है। पद्मावत में जहां रतन सेन और नागमती पद्मावती हैं, वहां अलाउद्दीन खिलजी भी है, उनकी चित्तौड़ विजय भी है। रूप लोक के तहत खिलजी चित्तौड़ पर हमला करके उसे जीतता है, किंतु जिसे हिंदू मुस्लिम संस्कृत का टकराव कहेंगे ऐसा कोई टकराव यहाँ भी यहाँ नहीं है। कम से कम उसका चित्रण जायसी को साध्य नहीं है। वे अलाउद्दीन को माया कहते हैं तथा बहुत कुछ असंपृक्त और तटस्थ भाव से उसकी चित्तौड़ विजय को चित्रित करते हैं। हमने ऊपर उनकी सेक्युलर मानसिकता को भी अपने निबंध में सराहा है। वस्तुतः यदि लोक धर्म का स्वरूप हमें ढूंढना और पाना ही हो तो हम उनकी उस संत सूफी मानसिकता में पा सकते हैं जहां वे लोक धर्म के परे प्रेम के दृढ़ सूत्र में मनुष्यता को पिरोने की बात करते हैं और इस प्रेम तत्व की सबसे बड़ी पूंजी मनुष्य की सबसे बड़े पुरुषार्थ के रूप में रेखांकित करते हैं। जायसी पर अपने निबंध में हमने उनकी इस प्रेम संबंधी विचारणा की चर्चा की है। उनके विचार से यह प्रेम ही मनुष्य को ईश्वर तक ले जा सकता है। उन्हें तो आपस में बांधता ही है मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, उनकी यह प्रसिद्ध उक्ति है। प्रेम तत्व की विराटता, उसकी पवित्रता तथा जीवन में उसकी आवश्यकता पर बराबर उनका बल रहा है। इंसानियत उनका भी साध्य है। सत्कर्म और सात्विक अंतःकरण तथा मन पर उनकी भी आस्था है। शैतानियत की वे भी बहुत भर्त्सना करते हैं, माया को प्रपंच मानते हैं। चित्तौड़ विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी को वे उसकी औकात बता देते हैं, जब पद्मावती के बजाय उसे उसकी राख मिलती है। शांत रस में उनके काव्य का पर्यावसन होता है। तमाम सारे प्रचलित लोक विश्वासों और कथारोणियों को चित्रित करते हुए भी उनका सारा बल प्रेम और इंसानी रिश्ते की इसी प्रेम पट्टी की छत पर रहा है। उनके लोक धर्म का यह रूप उन्हें कबीर जैसे संतों से जोड़ता है और उन्हें एक सूफी संत की गरिमा प्रदान करता है। कुछ चर्चा आप सगुण भक्त कवियों की करें, विशेषतः सूर तुलसी और मीरा की। वल्लभाचार्य ने भले सूर को अपने संप्रदाय में दीक्षित किया हो, वल्लभाचार्य भले मलेच्छाक्रांत धरती में कृष्ण के आश्रय में ही भक्ति की कल्पना कर रहे हों, जब सूर से उन्होंने लीला गायन करने को कहा तो जैसा कि हम सूर से संबंधित अपनी पिछली चर्चा में कह चुके हैं, सूर ने जो लीला गाई उसमें संप्रदाय और विचार कहीं गहरे हो तो हो, उन्होंने मनुष्य मात्र को उस गायन की लपेट में ले लिया है। सूर में भी कोई सामाजिक मिशन हमें नहीं दिखाई पड़ता, जैसा कि तुलसी के सामने वह था। उनकी लीला गायकी में संतप्त समाज का रंजन किया है, जो और यह और बात है। और रंजन तो उसने किया ही, किंतु सूर ऐसे किसी लक्ष्य को सतह पर सूचित नहीं करते। वे कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उन्होंने कृष्ण की लीला रस में डूब कर गायकी की है। जाति से वे ब्राह्मण भी थे, संस्कार भी उन्हें वंश परंपरा से मिले थे, किंतु उनके लीला गायन का जो स्कोप है, उसकी जो सीमा है, उसमें जो प्रसंग उन्होंने उठाया है, वे उन्हें इतना अवकाश या स्पेस नहीं देते कि उनके अंतर्गत ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होने के नाते प्राप्त संस्कार तथा सोच की अभिव्यक्ति हो सके। इन लीला प्रसंगों में वे इन्हें लाना भी चाहते हैं तो वे आरोपित लगते या तब सूर सही अर्थों में सूर नहीं होते। अतएव अपनी विषय वस्तु के नाते वे तमाम सारे सामाजिक धार्मिक आचार व्यवहारों मान्यताओं और विचारों की परंपरागत आर्य शास्त्रानुमोदित व्यवस्था के चित्रण से बच गए हैं। वल्लभाचार्य की अपनी विचारणा ही प्रेम को सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानने की रही है। सो यह प्रेम तत्व अपने पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ सूर के यहाँ विद्यमान है। इस प्रेम तत्व और इस लीला गायन में चूंकि दूसरी तमाम चीजें नहीं आ पाई हैं और उसका स्वरूप ऐसा है कि हिंदू मुसलमान सब उसमें डूबे उतराए हैं। मुसलमान कृष्ण भक्तों की अच्छी खासी परंपरा हिंदी में है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में हर कोई विचरण कर सकता है। सूर ने उन्हें इस प्रकार संजोया है कि वर्ण वर्ग धर्म जात नस्ल संप्रदाय सबसे परे उसमें सबके लिए रमने का अवकाश है। अतएव सूर के यहाँ भी सबसे बड़ा लोक धर्म कुछ है तो वह है प्रेम। कृष्ण के लोक रक्षक रूप की झांकियां बीच बीच में उन्होंने दी हैं, परंतु उनकी वृत्ति लीला गायन में ही रमी है। ब्रज की लोक संस्कृत पूरी ऊर्जा और उठान में उनके यहाँ है, किंतु हम फिर कहेंगे कि यह लोक तत्व की चीज है। लोक धर्म सूर के लिए प्रेम ही है, और जब वे इस प्रेम का चित्रण करते हैं, लीलाओं में डूबते हैं, तो जिसे शुक्ल जी ने लोक धर्म कहा है, सामाजिक मर्यादा कहा है, वे इस प्रेम और इस प्रेम लीलाओं के प्रवाह में तिनके के समान ऊब डूब करते दिखाई पड़ते हैं। जब ईश्वर की कल्पना ही शिष्य के रूप में हो तो शिष्य के मन में भेद बुद्धि कहाँ। स्पृश्य अस्पृश्य सब कुछ उसके लिए समान है और उसकी लीलाओं में सबके रमने के लिए भरा पूरा अवकाश है। प्रेम के इसी सात्विक माहौल में गोपियों और कृष्ण की लीलाएं हैं। महारास है, गोचारण है, चीरहरण सब कुछ तो है। परंपरागत तमाम सारी सामाजिक धार्मिक मर्यादा यहाँ नगण्य होकर रह गई है। शुक्ल जी कबीर पर परोक्ष व्यंग्य करते हैं, अनधिकारी होकर भी वे वेद शास्त्र की निंदा करते हैं, पंडितों ज्ञानियों की आलोचना करते हैं। सूर तो ब्राह्मण कुल के थे, कबीर जैसे पोथी ज्ञान से वंचित भी नहीं थे, किंतु उनके द्वारा रची सिरजी उनकी गोपियां अपढ़ ग्रामीणाएं कैसे उद्धव जैसे ब्रह्मज्ञानी का मखौल उड़ाती, उन्हें हैरान करती हैं और निर्गुण ब्रह्म के समक्ष प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। यही नहीं, महाराज के अवसर पर वंशी की ध्वनि सुनते ही पारिवारिक मर्यादा लोकलाज घूंघट पर सबका तिरस्कार करते हुए रात रात भर कृष्ण के साथ यमुना किनारे नृत्य करती हैं। और यही शुक्ल जी की भावातिरेक में पूर्वाग्रहों से मुक्त इस प्रेम को नारी पुरुष के बीच के इस स्वच्छ प्रेम को जीवन महोत्सव कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि लोक धर्म का आरोप वही नहीं है जो तुलसीदास के यहाँ है या जिसे शुक्ल जी ने लोक धर्म कहकर विज्ञापित किया है। लोक की हित चिंता, लोक का मंगल वही नहीं है जो शुक्ल जी द्वारा परिकल्पित है। वह वैसा भी हो सकता है जिसकी परिकल्पना कबीर ने की थी। आर्य शास्त्र अनुमोदित धर्म और समाज व्यवस्था से ही लोक का मंगल है, यह किसी की मान्यता हो सकती है, सबकी नहीं। उनसे मुक्ति में ही लोक का कल्याण होगा, यह विचारणा भी बराबर रही है। बुद्ध, महावीर आदि ऐसा ही कहते थे। अतएव लोक धर्म का कोई बना बनाया सनातन साचा नहीं हो सकता। समय और स्थितियों के संदर्भ में उनका रूप अलग अलग हो भी सकता है और उससे संबंधित सोच भी भिन्न भिन्न हो सकती है। नारियां गृहिणी बनकर पुरुष के अनुशासन में घर की चार दीवारी के भीतर रहें, शास्त्र इसकी व्यवस्था देते हैं। किसी के लिए लोक धर्म यह है तो किसी के लिए लोक धर्म नारी पुरुष के समतुल्य प्रेम संबंधों में, उनके समकक्षता में, नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व में, नारी मुक्ति में ही चरितार्थ हो सकता है। हमने सूर पर लिखे अपने निबंध में गोपियों की इस प्रेम लीला को नारी मुक्ति से, सामंतिक चौकटों से नारी मुक्ति की में महत्वपूर्ण माना है और सूर को इसका श्रेय दिया है कि वे नारी मुक्ति की उस युग में ऐसी परिकल्पना कर सके। यही सूर का बड़प्पन है। प्रेम तत्व यहाँ भी लोक धर्म की खरी पहचान के रूप में कबीर और जायसी की तरह विद्यमान है। जो लोक धर्म सूर के यहाँ है, वही अधिक उदग्र रूप में मीरा के यहाँ है। मीरा हर के हाथ बिकानी, लोक कहे बिगरी, या संतन ढिक बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीरा की ये तथा इन जैसी तमाम मुक्तियाँ लोक धर्म के उन रखवालों के लिए जिनके लिए परंपरागत धर्म और शास्त्र ही प्रमाण है, मीरा को लोक विरोधी घोषित करने के लिए पर्याप्त है। आखिर कबीर भी तो इसी नाते लोक विरोधी माने गए हैं। अब कोई मीरा से पूछे या मीरा का जो आत्मनिवेदन है उसके साक्ष्य पर बताए कि लोक धर्म क्या होता है या लोक धर्म किसे कहते हैं। भक्ति आंदोलन ने भक्ति के धरातल पर ही सही नारी और शूद्रों को भी अन्यों की भांति भक्ति के अर्थ में बराबरी के हक के साथ आने का आमंत्रण दिया, उन्हें उकसाया और प्रेरित किया। इसका प्रभाव शूद्रों तथा नारियों की सामाजिक स्थिति पर भी पड़ा। सामंती चौखटों में घुटती तड़पती नारी उन चौखटों को तोड़ने के लिए कसमसा उठी। भक्ति में उसे यह आधार मिला या भक्ति ने उसे यह आधार प्रदान किया और इसकी उदाहरण है मीरा। राजवंश की प्रसिद्ध राजवंश की वधु मीरा राजमहलों को ठुकरा कर जो बाहर आ गई और फिर कभी महलों में नहीं लौटी। प्रेम तत्व मीरा के काव्य का भी प्राण तत्व है। यह प्रेम कृष्ण के प्रति है या किसी के भी प्रति, जिसके विषय में बात उठाई गई है यह नारी का सच्चा प्रेम है, जिसमें अनन्यता है, त्याग है, समर्पण है, अप्रतिहत निष्ठा है। यह प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है उस नारी की जो धर्म, वेद, शास्त्र, कुल कान, लोक समाज सबसे हटकर उनके द्वारा लगाए गए बंधनों को छिन्न भिन्न कर अपने प्रणय को अंजाम देना चाहती है। मीरा ने यही किया। मीरा पर अपने संक्षिप्त निबंध में हम कह चुके हैं कि जिसे समाज या शुक्ल जी की भाषा में लोक कहते हैं, उसने परिवारजनों ने मीरा पर कौन कौन से कहर नहीं ढाए, क्या क्या उन्हें नहीं भोगना पड़ा। अंततः वे महलों से निकल कर बाहर आई, साध संतों की संगत में उन्हें संतोष मिला। जिस कृष्ण के लिए, जिस प्रीतम के लिए घर से निकली थी, जिसके नाते तमाम कुछ भोगा और सहा था, उसी के लिए दर दर भटकते हुए अंततः उसी में समा गई। मीरा का साहित्य लें तो लोक धर्म के कौन से प्रतिमान बनेंगे। जिसे लोक धर्म कहकर विज्ञापित किया जाता है उसके चौखटे में मीरा नहीं आती। हम कह चुके हैं कि उनका आचरण लोक विरोधी आचरण माना जाएगा, पर क्या यह सचमुच लोक विरोधी आचरण है। अतएव लोक धर्म को किसी सनातन ढांचे में अथवा एक ही सांचे में नहीं बांधा जा सकता। इस बात को हम पुनः रेखांकित करना चाहते हैं। लोक धर्म का एक रूप तुलसीदास में भी है, जिसकी रचना का दायरा समूचे मानव जीवन तक, समूचे समाज तक व्याप्त है और जिनका आविर्भाव सामाजिक क्रांति के एक खास दौर में हुआ था। गोस्वामी जी पंडित थे, ज्ञानी थे और सच्चे भक्त थे। उन्हें अपनी परंपरा से बहुत कुछ मिला था, या कहें परंपरा से उन्होंने बहुत कुछ अर्जित किया था। वे दृष्टा भी थे, चिंतक और विचारक भी थे। अपने समय के समाज से उनकी असहमति ही उनकी राम राज्य की परिकल्पना के रूप में सामने आई है। जो कुछ परंपरा से उन्हें मिला था, जो कुछ उनकी सामाजिक और धार्मिक सोच थी, भक्ति की उनकी जो परिकल्पना थी उनके संदर्भ में वे अपने समय के समाज को देख रहे थे। उसकी गतिविधि से वे क्षुब्ध थे और उसे अपनी परिकल्पना की सामाजिक धार्मिक आध्यात्मिक व्यवस्था देने के आकांक्षी थे। शील शक्ति और सौंदर्य ईश्वरीय विभूति के तीनों पक्षों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें राम का चरित्र ही ऐसा मिला जिनमें इनका संपुंजन था। राम के चरित्र को केंद्र में रखकर उन्होंने अपनी उपर्युक्त सोच को व्यावहारिक रूप देने हेतु मानस तथा अन्य ग्रंथों की रचना की और अपनी रचना सामर्थ्य तथा बड़े लक्ष्य के तहत युगांतरकारी व्यक्तित्व भक्त तथा कवि के रूप में सराहे पहचाने गए। गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित अपनी पिछली चर्चाओं में हम बता चुके हैं कि उनके यहाँ अंतर विरोध है तो उस भूमि पर जहाँ वे समाज दृष्टा परंपरागत वेद शास्त्रों के प्रति निष्ठावान वेद शास्त्र भी सामाजिक एवं धार्मिक आचार संहिता के मर्यादा के प्रवक्ता अपने अर्जित तथा वंश परंपरा से प्राप्त संस्कारों के तहत मिशनरी समाज दृष्टा के रूप में सामने आते हैं और जहाँ वे महज एक आर्त भक्त हैं, भक्ति आंदोलन की उदात्त चेतना के संवाहक एक संवेदनशील कवि एवं सहृदय मनुष्य हैं। तुलसी के इन दोनों व्यक्तित्वों का अंतर विरोध उनके काव्य में बराबर दिखाई पड़ता है। शुक्ल जी तुलसी के माध्यम से जिस लोक धर्म की प्रतिष्ठा देखते हैं और जिसे वे वास्तविक तथा आदर्श लोक धर्म कहते हैं उसका संबंध तुलसीदास के पहले रूप से अधिक है। दूसरे धरातल पर वे उसके विपरीत भी जाते हैं और जैसा हम कह चुके हैं भक्ति को ही सबसे बड़ा मानते हैं, वह किसी के द्वारा की गई हो। मोरे मन अति दृढ़ विश्वासा राम से अधिक राम कर दासा। भक्त को भगवान से भी श्रेष्ठ मानना गोस्वामी जी के इसी दूसरे व्यक्तित्व की पहल है। पहले वाले रूप में तो वे शुक्ल जी के द्वारा जैसे विवेचित विज्ञापित हैं, लोक संग्रही समन्वयकर्ता समाज संस्कारक वेद शास्त्र विहित सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के प्रतिष्ठाता दुष्टों के दलनकर्ता तथा धर्म की संस्थापना करने वाले अवतारी रूप के उपासक आदि हैं। अपने इस रूप में भी गोस्वामी जी एकदम वही नहीं है जैसा परंपरागत आस्थाओं के तहत उसके जड़ प्रतिपादक उनसे चाहते थे। इसी नाते अपने समय में गोस्वामी जी को भी कट्टर पंडितों का विरोध सहना पड़ा था। धूत कहो अवधूत कहो जैसी झुंझलाहट भरी उक्ति कहनी पड़ी थी। गोस्वामी जी ने अपने तई परंपरागत व्यवस्था को अपनी भक्ति के दबाव में कुछ उदार भी बनाते हैं, उसे अत्यधिक मानवीय बनाना चाहते हैं किंतु सीमा के भीतर। उनके राम राज्य में चारों वर्ण सुखी हैं, कोई भी विषमता नहीं है किंतु हैं चारों वर्ण। वे वर्ण व्यवस्था को अपने ढंग से नई मर्यादा नया स्वरूप देना चाहते हैं। यही काम शुक्ल जी भी करते हैं किंतु वर्ण व्यवस्था की समाप्त चली आ रही सामाजिक संरचना की बुनियाद को मिटा देने के पक्ष में वे कतई नहीं है। वे सुधारक हैं, सुधार चाहते हैं, इससे आगे और कुछ नहीं। अतः स्वाभाविक है कि अपने सामाजिक सरोकारों के चलते अपने महत् लक्ष्य के चलते लोक धर्म का जो रूप उन्होंने उभारा है उसका मेल संतों से या औरों से न बैठे। यही हुआ भी। गोस्वामी जी अपने ढंग से बड़े हैं, उनके व्यक्तित्व में बड़प्पन है, उनकी समाज चिंता उनकी लोक चिंता का दायरा बड़ा है, उनकी सूझबूझ बड़ी है। लोक के साथ शास्त्र के समन्वय कर दोनों की शक्ति को पहचानते हुए उन्होंने जो कुछ रचा और कहा समाज के एक बड़े भाग पर साधारण जन तक पर भी उसका गहरा और स्थायी प्रभाव है। लोक चित्त की उनकी पहचान अनूठी थी, इस नाते लोक में उन्हें मान्यता मिली, उनके महत्व का अवमूल्यन नहीं हो सका। हम जो कहना चाहते हैं वह गोस्वामी जी के बड़प्पन को उनके महत्व को हम उनके अपने अंतर विरोधों के बीच से उन्हें नजरअंदाज न करते हुए ही पहचानते और प्रतिपादित करने की जरूरत है। एक आयामी रूप में उन्हें बड़ा साबित करना या विचार के धरातल पर संतों या दूसरों से कमजोर और प्रतिगामी बताना सही नहीं है। उनकी सोच और संवेदना को उनके समूचे कृतित्व को उनके विविध भूमिकाओं को समग्रता में लेकर उन पर आयोजनी करना ज्यादा सही होगा। गोस्वामी जी एक भक्त भी हैं, बचपन में दरिद्रता और गहरी दरिद्रता भोगने वाले अभावों की यातना से गुजरने वाले साधारण जन के कष्टों से द्रवित होने वाले उनका यह रूप उनके अन्य रूपों से किसी प्रकार कमतर नहीं। विनय पत्रिका कवितावली हनुमान भाव जैसी रचनाओं में वे हमें भीतर तक प्रभावित करते हैं। वे अकाल पर लिखते हैं दरिद्रता रूपी रावण से मुक्ति की याचना अपने राम से करते हैं। मनुष्य के भाव जगत में गहरे उतरते हैं, उसे कर्मठता का संदेश देते हैं। गोस्वामी जी यहाँ भी हैं, उनके धर्म में ऐसा बहुत कुछ है जो उन्हें उनसे अलग करता है। हमें इन दोनों स्थितियों के बीच से उनके लोक धर्म का सही आकलन करना चाहिए। समग्रतः भक्ति काव्य में लोक धर्म की यही वैविध्यपूर्ण छवि है। जैसा हमने कहा है भक्ति काव्य में लोक धर्म एक सांचे में ढला लोक धर्म नहीं है। संतों तथा भक्तों ने उसे अपने अपने अनुभवों सोच तथा नीतियों के तहत उभारा है। एक बात जो विश्वास के साथ कही जा सकती है वह यह कि अपनी संवेदना तथा सोच के सबसे उदात्त क्षणों में वे एक स्वर से प्रेम की, मानव प्रेम की, सच्चे प्रेम की बात करते हैं। लोग के कष्टों से द्रवित होते हैं और उसे लोक की मुक्ति के लिए ही अपने अपने आराध्यों के समक्ष नत होते हैं। भक्ति के धरातल पर संसार के सारे कर्तव्यों को संपादित करते हुए, संसार से प्रेम करते हुए, सच्चे अंतकरण से आराध्य के पद अहेतुक निस्वार्थ के भक्ति के हामी है। उनका मानना है कि जिस समाज में मानव प्रेम तथा भक्ति का यह स्वरूप विद्यमान होगा, वह समाज उन्नत होगा। इसी उन्नत समाज की परिकल्पना उन्होंने की है और इसे अपने ढंग से प्रतिपादित किया है।